ओम शांति, ओम शांति। मीठे बाबा की आज की मुरली का सार एक शब्द में है, याद। याद की कितनी गहराई है वो आज बाबा ने बताई है। कैसे करें याद, क्या उससे लाभ होगा, नहीं करेंगे तो क्या घाटा पड़ेगा, कई बातें आज बाबा ने याद पर बताई है। कितना महत्व है बाबा की याद का, अगर वो सचमुच उस महत्व को समझ लें तो हम कैसे बन जाएंगे, उस याद से हम कैसे बन जाएंगे, बाबा ने वो भी बताया। तो सारी मुरली याद पर है, भिन्न भिन्न रूपों से बाबा ने याद पर समझाया है। मुश्किल भी है, सहज भी है। मुश्किल क्यों लगती है याद, सहज कैसे है, वो भी बाबा ने आज स्पष्ट किया है। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य और अपने आप अपने से लगाएंगे कि हम क्या इसी रूप से बाबा को याद करते हैं। आज 28/4/2026 है। मीठे बच्चे, बाप समान लवली बनने के लिए अपने को आत्मा बिंदु समझ, बिंदु बाप को याद करो। बिंदु समझ, बिंदु बाप को याद करो तो क्या हो जाएंगे, बाप समान लवली बन जाएंगे। तो मीठे बच्चे, बाप समान लवली बनने के लिए अपने को आत्मा बिंदु समझ, बिंदु बाप को याद करो। प्रश्न है, याद में रहने की गुप्त हड्डी मेहनत हर एक बच्चे को करनी है। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाए हैं, बाबा के बच्चे बन गए हैं, तो याद में रहने की गुप्त हड्डी मेहनत हर एक बच्चे को करनी है। क्यों हड्डी मेहनत है, क्योंकि माया छोड़ती तो है नहीं, लेकिन हड्डी मेहनत करेंगे तो ये याद ठहरेगी। तो क्यों करनी है, उत्तर, क्योंकि याद के बिगर आत्मा पाप आत्मा से पुण्य आत्मा नहीं बन सकती है। एक ही तरीका है पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनने का, वो है याद। जब गुप्त याद में रहे, ये याद भी गुप्त है, दिखावे की याद नहीं है, जब गुप्त याद में रहे, देही अभिमानी बने, तब विकर्म विनाश हो। धर्म राज की सजाओं से बचने का साधन भी याद है। माया के तूफान याद में ही विघ्न डालते हैं, इसीलिए याद की गुप्त मेहनत करो। ये गुप्त मेहनत है, तभी लक्ष्मी नारायण जैसा लवली बन सकेंगे। बाप भी लवली है, दादा भी लवली है, जो लक्ष्य हमारा लक्ष्मी नारायण वो भी कितने लवली है। तो हमें भी लवली बनना है, पर कैसे बनेंगे, जब बिंदु समझ बिंदु बाप को याद करेंगे। गीत है, ओम नमो शिवाय। ओम शांति, ओम शांति। यह महिमा है सबके बाप की, है ना। ओम नमो शिवाय, पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवाले हो। तो ये महिमा है सबके बाप की। याद किया जाता है भगवान अर्थात बाप को, उन्हें मात पिता कहते हैं ना, गॉड फादर भी कहा जाता है। क्रिश्चियन धर्म में फादर ही मानते हैं, मात पिता नहीं कहते। केवल भारत में मात पिता कहते हैं, गॉड फादर कहा जाता है। ऐसे नहीं सब मनुष्यों को गॉड फादर कहेंगे, वो तो एक ही होगा ना, गॉड द फादर। ऐसे नहीं सब मनुष्यों को गॉड फादर कहेंगे। बाबा तो उनको लौकिक बाप को भी कहते हैं, पिता है तो लौकिक पिता भी पिता है। लौकिक बाप जिसको कहते हैं वो भी फिर पारलौकिक बाप को याद करता है। वो लौकिक बाप तो ऊंचे ऊंचा तो नहीं है ना, वो भी पारलौकिक बाप को याद करता है। वास्तव में याद करने वाली आत्मा है जो लौकिक बाप को भी याद करती है। वो आत्मा अपने रूप को, ऑक्यूपेशन को नहीं जानती है, भले याद करती है परमात्मा को, लौकिक बाप को भी याद करती है, लेकिन न खुद को जानती है न बाप को जानती है। वो आत्मा अपने रूप को, ऑक्यूपेशन को नहीं जानती है। आत्मा अपने को ही नहीं जानती तो गॉड फादर को कैसे जानेगी। इसलिए इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन लीड्स टू गॉड रियलाइजेशन। जब तक सेल्फ को रियलाइज नहीं किया तब तक गॉड को भी रियलाइज नहीं कर सकेंगे। तो आत्मा अपने को ही नहीं जानती तो गॉड फादर को कैसे जानेगी। अपने लौकिक फादर को तो सब जानते हैं, उनसे वर्षा मिलता है, नहीं तो याद क्यों करे। लौकिक पिता को भी याद क्यों करते, क्योंकि उनसे वर्षा मिलता है, नहीं तो याद क्यों करे। पारलौकिक बाप से जरूर वर्षा मिलता होगा। कहते हैं ओ गॉड फादर, उनसे रहम क्षमा मांगते हैं, है ना। बहुत कुछ मांगते हैं, वस्तुएं भी मांगते हैं, गुण भी मांगते हैं, फिर क्षमा भी मांगते हैं। उनसे रहम क्षमा मांगेंगे क्योंकि पाप करते रहते हैं। मनुष्य समझते हैं ना, हम तो पाप करते रहते हैं तो भगवान से क्षमा मांगते हैं। तो इसीलिए इंग्लिश में भी कई ऐसी कहावतें हैं, टू एयर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। भूले करना ये मनुष्य का काम है और क्षमा करना ये भगवान का काम है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम भूले करते रहे और वो क्षमा करता रहे, लेकिन क्षमा वो करते हैं, ये भी बाबा कहते हैं। इसीलिए याद करते हैं भगवान को। तो उनसे रहम क्षमा मांगेंगे क्योंकि पाप करते रहते हैं। अब ये भी ड्रामा में नूब है, भगवान से क्षमा मांगना, उनको याद करना उसके लिए। परंतु आत्मा को जानना और फिर परमात्मा को जानना ये डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। अब क्यों बाबा डिफिकल्ट कहते हैं, क्योंकि ज्ञान तो बहुत सहज है, ज्ञान बड़ी बात नहीं है, लेकिन याद में रहना, बाबा कहते हैं आत्मा को जानना परमात्मा को जानना ये डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। इजी से इजी भी है और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट भी है याद। भल कितना भी साइंस आदि सीखते हैं जिससे मून तक चले जाते हैं, तो भी इस नॉलेज के आगे वो तुच्छ है, है ना, तुच्छ है। क्यों बाबा कहते हैं, कितना उनके पास ज्ञान है, विज्ञान की शक्ति से वो चंद्रलोक, मंगल ग्रह, न जाने कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं, सागर के भी तले चले जाते हैं, सब कुछ ढूंढ लेते हैं, लेकिन खुद को नहीं पहचानते। तो बाबा कहते हैं वो तो भी इस नॉलेज के आगे वो सब तुच्छ है। अपने को और बाप को जानना बड़ा मुश्किल है। जो भी बच्चे अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं वो भी अपने को आत्मा निश्चय करे। बाकी तो ज्ञान की बाबा कहते लबाड़ तो बहुत मारते हैं ना, पर अपने को आत्मा निश्चय करे, मैं आत्मा बिंदी हूँ ये निश्चय करे, मैं आत्मा बिंदी हूँ, हमारा बाप भी बिंदी है, ये भूल जाते हैं। ये है डिफिकल्ट सब्जेक्ट, मैं आत्मा भी बिंदी हूँ बाप भी बिंदी है, ये डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, भूल जाते हैं। ये है डिफिकल्ट सब्जेक्ट, अपने को आत्मा भी भूल जाते हैं तो बाप को याद करना भी भूल जाते हैं। देही अभिमानी बनने का अभ्यास नहीं है, आत्मा बिंदी है उसमें ही 84 जन्मों का पाठ मूंढा हुआ है, जो मैं आत्मा भिन्न भिन्न शरीर ले पाठ बजाती हूँ ये घड़ी घड़ी भूल जाता है। तो मुख्य बात यही समझने की है, आत्मा और परमात्मा को समझने के सिवाय बाकी नॉलेज तो सब बुद्धि में आ जाता है। 84 का चक्र कैसे घूमता है वो तो सब सहज बुद्धि में आ जाता है, लेकिन आत्मा और परमात्मा को समझने के सिवाय बाकी नॉलेज तो सब बुद्धि में आ जाता है। हम 84 जन्म लेते हैं, सूर्यवंशी चंद्रवंशी वैश्यवंशी शूद्रवंशी बनते हैं, ये चक्र तो बहुत सहज है, समझ जाते हैं, परंतु सिर्फ चक्र को जानने से इतना फायदा नहीं है जितना अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करने में फायदा है। मैं आत्मा स्टार हूँ, एकदम सूक्ष्म बिंदु हूँ, मैं आत्मा स्टार हूँ, फिर बाप भी स्टार अति सूक्ष्म है, कितना सूक्ष्म है वो, वही सदगति दाता है, उनको याद करने से ही विकर्म विनाश होने हैं। इस तरीके से कोई भी निरंतर याद नहीं करते, बाबा को कहना पड़ता है इस तरह आत्मा में बिंदु हूँ और बाप भी बिंदु है अति सूक्ष्म स्टार है, उनकी याद से विकर्म विनाश होते हैं, इस तरीके से कोई भी निरंतर याद नहीं करते, देही अभिमानी नहीं बनते। अब निरंतर याद तो आगे होगा ना, पहले तो देही अभिमानी बने वो ही नहीं बनते। घड़ी घड़ी ये याद रहे मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ, बाप का फरमान है मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, मैं बिंदी हूँ, सारा दिन यही बुद्धि में रहे मैं बिंदी हूँ मैं बिंदी हूँ, यहाँ पाठधारी आकर बना हूँ, मेरे में 5 विकारों की कट चढ़ी हुई है, आयरन एज में है। अब गोल्डन एज में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, कट चढ़ी हुई है आत्मा पर और गोल्डन एज में जाना है, आयरन एज बन गए हैं तो गोल्डन एज में जाना है, इसलिए बाप को बहुत प्यार से याद करना है। इस रीति बाप को याद करेंगे तब कट निकल जाएगी, मैं आत्मा बिंदी हूँ बाप बिंदी को याद कर रही हूँ, इस प्रकाश से याद करे तो बाबा कहते हैं झट कट निकल जाएगी। ये है मेहनत, सर्विस की लबाड़ तो बहुत मारते हैं, बाबा के पास भी आते थे, बाबा मैंने ये सेवा की ये सेवा की ये सेवा की, पत्र सारे लंबे चौड़े बाबा को लिखते थे अपनी सेवा समाचार के, तो सर्विस की लबाड़ तो बहुत मारते, लबाड़ मारे लंबा चौड़ा लिखते रहते। आज ये सर्विस की बहुत प्रभावित हुए, परंतु शिव बाबा समझते हैं आत्मा और परमात्मा के ज्ञान पर कुछ भी प्रभावित नहीं हुआ। बाकी तो बहुत कुछ सुन लिया, बहुत अच्छा ज्ञान है, बहुत अच्छा है, सबके लिए होना चाहिए, परंतु आत्मा और परमात्मा के ज्ञान पर कुछ भी प्रभावित नहीं हुआ। भारत हेवन और हेल कैसे बनता है, 84 जन्म कैसे लेते हैं, सतो रजो तमो में कैसे आते हैं, सिर्फ ये सुनकर प्रभावित होते हैं। परमात्मा निराकार है ये भी समझ जाते हैं, बाकी मैं आत्मा हूँ, मेरे में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, बाप भी बिंदी है, उनमें सारा ज्ञान है और उनको याद करना है, ये बातें कोई भी समझते नहीं है। तो मुख्य बात तो समझते ही नहीं है, आत्मा परमात्मा की बात तो समझते ही नहीं है, बाकी तो लबाड़ मारते रहते। बाबा कहते हैं मुख्य बात तो समझते ही नहीं है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज तो बाप ही देते हैं, गवर्नमेंट भी चाहती है कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी होनी चाहिए, ये तो उनसे भी सूक्ष्म बातें हैं। आत्मा परमात्मा की बातें उस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी से भी सूक्ष्म बातें हैं। आत्मा क्या है, उनमें कैसे 84 जन्मों का पाठ है और वो भी अविनाशी है, ये याद करना, अपने को बिंदी समझना और बाप को याद करना जिससे विकर्म विनाश हो, इस योग में कोई भी तत्पर नहीं रहते। देखो बाबा ने क्या सर्टिफिकेट दिया बच्चों को, कौन से योग में नहीं रहते हैं? अपने को बिंदी समझना और बाप को याद करना, वो भी बिंदी रूप में, जिससे विकर्म विनाश हो, इस योग में कोई भी तत्पर नहीं रहते हैं। इस याद में रहे, मैं बिंदी हूँ और बाबा बिंदी है और मैं उस बिंदी की याद में रहूं, तो क्या हो जाए? बाबा कहते तो बहुत लवली हो जाए, बहुत प्यारे बन जाए। ये लक्ष्मी नारायण देखो कितने लवली हैं, यहाँ के मनुष्य तो देखो कैसे हैं, खुद भी कहते हैं मनुष्य, कलयुग के मनुष्य खुद भी कहते हैं हमारे में कोई गुण नहीं है, हम जैसे मलेच हैं, देवताओं के आगे जाकर कहते हैं हमारे में कोई गुण नहीं है, हम जैसे मलेच हैं, और आप स्वच्छ हो, हम मलेच हैं आप स्वच्छ हो। तो जब अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करे तब सफलता मिले, नहीं तो सफलता बहुत थोड़ी मिलती है। समझते हैं हमारे में बहुत अच्छा ज्ञान है, हमारे में तो बहुत अच्छा ज्ञान है, मैं कितना अच्छा समझाता हूँ समझाती हूँ, तो बहुत अच्छा ज्ञान है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी हम जानते हैं, परंतु योग का चार्ट तो नहीं बताते हैं। मुश्किल कोई है जो इस अवस्था में रहते हैं, अर्थात अपने आप को आत्मा समझ बाप को याद करते हैं। हाँ बाबा कहते हैं कोई मुश्किल करते हैं, बहुतों को अभ्यास ही नहीं है। अब बाबा समझाते हैं कि बच्चे सिर्फ ज्ञान का चक्र बुद्धि में फिराते हैं, वो तो बहुत सहज है चक्र फिराना बुद्धि में, तो बच्चे सिर्फ चक्र ज्ञान का चक्र ही बुद्धि में फिराते हैं, बाकी मैं आत्मा हूँ, बाबा से हमको योग लगाना है जिससे आयरन एज से निकल गोल्डन एज में जाएंगे, मुझ आत्मा को बाप को जानना है, उसकी याद में ही रहना है, ये बहुतों का अभ्यास कम है। देखो बाबा बच्चों की रिजल्ट बता रहे हैं, मुझ आत्मा को बाप को जानना है, उसकी याद में रहना है, ये बहुतों का अभ्यास कम है। बहुत आते भी हैं, अच्छा अच्छा भी कहते हैं, बाकी उनको ये पता नहीं पड़ता, अच्छा अच्छा कहते हैं, सब देखते अच्छा अच्छा करते हैं, परंतु ये उनको पता नहीं पड़ता कि अंदर कितनी कट लगी हुई है। हाँ अच्छा तो अच्छा करते, लेकिन आत्माओं में कितनी कट लगी हुई है ये नहीं समझते हैं। ये पता नहीं पड़ता। सुंदर से श्याम बन गई है, क्या सुंदर थी हम आत्माएं और क्या श्याम बन गई है। फिर सुंदर कैसे बने ये तो कोई भी नहीं जानते हैं। सिर्फ हिस्ट्री ज्योग्राफी जानने का काम नहीं है, पावन कैसे बने, सजाएं न खाएं उसका उपाय क्या है ये समझना है। सिर्फ याद में रहना ही उपाय है बस, और कोई उपाय नहीं है सजाओं से बचने का या कट निकालने का। योग ठीक नहीं होगा तो धर्मराज की सजाएं खाएंगे। यह बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, याद की सब्जेक्ट बहुत बड़ी सब्जेक्ट है जिसको कोई उठा नहीं सकते। ज्ञान में अपने को मियां मिठू समझ बैठे हैं, मुझे तो बहुत ज्ञान है, मेरे अंदर तो बहुत ज्ञान है, मैं बहुत अच्छा समझाता हूँ, तो ज्ञान में तो अपने को मियां मिठू समझ बैठते हैं, उसमें कोई शक नहीं। हाँ है ज्ञान बहुत, बाबा भी समझते हैं, बहुत अच्छा समझाते हैं, तो परंतु अपनी महिमा करते रहते हैं तो मियां मिठू हो गए, इसमें कोई शक नहीं है। पर मूल बात है योग की, योग में बहुत कच्चे हैं, इसलिए बाबा क्या कहते हैं, योग में बहुत कच्चे हैं, बाबा जानते हैं, इसलिए बाप कहते हैं खबरदार रहो, खबरदार रहो। सिर्फ पंडित नहीं बनना है, मैं आत्मा हूं, मुझे बाप को याद करना है। बाप ने फरमान दिया है मन मना भव, ये है महामंत्र। अपने को स्टार समझ, बाप को भी स्टार समझो। स्टार हाँ, आकाश में देखते ना स्टार चमक रहे हैं सितारे, तो मैं भी एक सितारा हूँ, तो कौन सा सितारा हूँ वो भी देखो। हाँ एक को मैंने कहा आप कौन से सितारे हो, कितने सितारे हैं, सबके अलग अलग नाम भी होते हैं जिनको एस्ट्रोनॉमी में ये सब नाम बताते हैं, तो तुम कौन से स्टार हो, तो कहता मैं ध्रुव तारा हूँ। ध्रुव तारा जो बताते ना तो वो एक ही जगह होता है, वही चमकता रहता है, पर बाकी तारे तो बदलते रहते थोड़ा तो बाबा कहते हैं अपने को स्टार समझ, बाप को भी स्टार समझो, फिर बाप को याद करो। बाप का कोई बड़ा रूप नहीं सामने आता है, तो देही अभिमानी बनने की ही मेहनत है। विश्व का महाराजा महारानी तो एक ही बनते हैं, परंतु उनकी लाखों प्रजा बनती है। चलो विश्व महाराजन महारानी तो एक ही बनेंगे, लेकिन उनके राज घराने के कितने होंगे, प्रजा कितनी होगी उनकी, जिनकी लाखों प्रजा बनती है, प्रजा तो बहुत है ना। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना तो सहज है, परंतु जब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तब पावन बनेंगे। ये अभ्यास बड़ा डिफिकल्ट है, याद करने बैठेंगे तो बहुत तूफान विघ्न डालते हैं। कोई आधा घंटा भी एक रस हो बैठे बड़ा मुश्किल है, घड़ी घड़ी भूल जाएंगे इसमें। हाँ घड़ी घड़ी भूल जाते, इसीलिए बाबा कहते हैं इसमें सच्ची सच्ची गुप्त मेहनत है, गुप्त मेहनत है, सच्ची सच्ची, खाली थोड़ी बहुत मेहनत नहीं, सच्ची सच्ची गुप्त मेहनत है। चक्र का राज जानना तो सहज है, बाकी देही अभिमानी हो बाप को याद करना ये मुश्किल कोई समझते हैं और उस एक्ट में आते हैं। बाप की याद से ही तुम पावन बनेंगे, बाप की याद से ही निरोगी काया होगी, बड़ी आयु मिलेगी। क्या क्या लाभ है बाबा की याद से, पावन बनेंगे, निरोगी काया मिलेगी, बड़ी आयु मिलेगी। सिर्फ वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाने से माला के दाने नहीं बन सकते हैं, दाना बनेंगे याद से। ये मेहनत कोई से पहुंचती नहीं है, खुद भी समझते हैं कि हम याद में नहीं रहते हैं। अच्छे अच्छे महारथी भी इस बात में ढीले हैं। तो मुख्य बात समझाना आता ही नहीं है। और बातें तो कितनी समझाते हैं, मुख्य बात तो समझाना आता ही नहीं है। ये बात है भी मुश्किल, बात भी मुश्किल है ना, आत्मा समझ, बिंदी समझ, बिंदी बाप को याद करना, ये बात है भी मुश्किल। कल्प की आयु इन्होंने बड़ी कर दी है। हाँ, ये तो बहुत अच्छा समझा लेते हैं। तुम 5000 वर्ष तो सिद्ध करते हो, परंतु आत्मा परमात्मा का राज कुछ भी नहीं जानते हैं, याद ही नहीं करते। इसीलिए क्या होता है, नहीं याद करते हैं इसलिए अवस्था डगमगाती रहती है, अवस्था नीचे ऊपर होती रहती है, क्योंकि याद नहीं करते हैं। देह अभिमान बहुत है, देही अभिमानी बने तब माला का दाना, हाँ, देही अभिमानी बने तब माला का दाना बन सके। ऐसे नहीं कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं इसीलिए हम तो माला में नजदीक आ जाएंगे, केवल हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं तो हम माला में बाबा के नजदीक आ जाएंगे, नहीं। आत्मा इतनी छोटी है, इसमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, इस बात को पहले पहले बुद्धि में लाना है। हमारी दादी जानकी इस पर बहुत जोर देती थी। आप पॉजिटिव थिंकिंग कोर्स कराते हैं, सेल्फ मैनेजमेंट कोर्स कराते हैं, कितनी बड़ी बड़ी बातें करते, लेकिन आत्मा परमात्मा का तो ज्ञान ही नहीं देते, तो बाकी क्या। हम तो ये भी देखते, वैल्यू एजुकेशन की बातें करते हैं ना, वैल्यू एजुकेशन, लेकिन वैल्यूज किस में आती है, आत्मा में आती है ये नहीं बताते, खाली वैल्यूज वैल्यूज की बातें करते। तो आत्मा और परमात्मा का ज्ञान देना कितना मुख्य है। तो बाबा कहते हैं, हाँ, तो हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं इसलिए हम माला में नजदीक आ जाएंगे, ऐसे समझते हैं, नहीं। आत्मा इतनी छोटी है, इसमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, इस बात को पहले पहले बुद्धि में लाना है, फिर चक्र को याद करना है। तो मूल बात है योग की, योगी अवस्था चाहिए, योगी अवस्था चाहिए। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना है। आत्मा पवित्र होगी योग से। कैसे बनेगी पाप आत्मा से पुण्य आत्मा? पवित्र बनेगी योग से। योग बल वाले ही, क्या उनको सबसे बड़ा लाभ होगा योग बल वालों को? योग बल वाले ही धर्मराज के दंडों से बच सकते हैं। अगर योग बल नहीं होगा तो धर्मराज की सजाएं खाएंगे, भले कितना भी ज्ञान हो। तो धर्मराज की के दंडों से बच सकते हैं योग बल वाले। ये मेहनत बड़ी मुश्किल कोई से होती है, माया के तूफान बहुत आएंगे। बाबा को ये भी पता है और बताते भी हैं कि माया के तूफान बहुत आएंगे, पर ये बहुत हड्डी गुप्त मेहनत है। लक्ष्मी नारायण बनना क्या है? मासी का घर नहीं है। बाबा मम्मा ने कितनी मेहनत की तभी तो इतना ऊंच पद लिया। तो लक्ष्मी नारायण बनना मासी का घर नहीं है। यह अभ्यास हो जाए, अभ्यास हो जाए तो चलते फिरते बाप की याद आती रहे, इसको ही योग कहा जाता है। बाकी ये ज्ञान की बातें तो छोटे छोटे बच्चे भी समझा सकते हैं, क्या बड़ी बात है। हाँ, छोटे छोटे बच्चे भी समझ जाएंगे और समझा भी सकेंगे। चित्रों में सब युग आदि लिखे हुए, बच्चे भी चित्र समझाते रहते हैं, तो चित्रों में सब युग आदि लिखे हुए हैं, ये तो कॉमन है। जब कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो स्वास्तिका लगाते हैं, स्वास्तिका लगाते हैं ना, हाँ ये श्री गणेश करते हैं तो पहले स्वास्तिका लगाते हैं, ये निशानी है स्वास्तिका, किसकी निशानी है? सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग की। बाकी ऊपर भी है छोटा सा संगम युग, तो पहले पहले अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहेंगे तभी वो शांति फैल सकती है। योग से विकर्म विनाश होंगे, सारी दुनिया इस बात में भूली हुई है, किसी को भी पता नहीं है सारी दुनिया में इस आत्मा, आत्मा हूँ परमात्मा, मैं बिंदी हूँ परमात्मा भी बिंदी है, बाबा कहते हैं सारी दुनिया इस बात को भूली हुई है। आत्मा और परमात्मा के बारे में कोई कहते परमात्मा हजारों सूर्यों से तेजोमय है, उस दिन भी बताया ना जितने मुख उतनी बातें, परमात्मा के बारे में भी तो आत्मा के बारे में भी। कोई कहते हैं परमात्मा हजारों सूर्यों से तेजोमय है, परंतु ये कैसे हो सकता है, तो हम उसके नजदीक कैसे जाएंगे हजारों सूर्यों से तेजोमय? एक सूर्य के नजदीक भी नहीं जा सकते, कितना बहुत बार तपता है जब सूरज, तो हम अपने आप को ढक लेते हैं, सूरज के नजदीक भी नहीं जाते, तो हजारों सूर्यों से तेजोमय होगा तो कैसे नजदीक जाएंगे उनके? तो कोई कहते हजारों सूर्यों से तेजोमय है, परंतु ये हो कैसे सकता है? जबकि कहते हैं, फिर ये भी कहते हैं कि आत्मा सो परमात्मा, फिर तो दोनों एक हुए ना, फिर तो आत्मा भी हजारों सूर्यों से तेजोमय, छोटे बड़े का फर्क नहीं पड़ सकता फिर, आत्मा सो परमात्मा तो सब परमात्मा हो गए, तो फिर छोटे बड़े का फर्क ही नहीं, परमात्मा ऊंचे से ऊंचा है ये फर्क ही नहीं पड़ेगा फिर, छोटे बड़े का फर्क नहीं पड़ सकता फिर। इस पर भी समझाना है, भले आत्मा का रूप बिंदी है और परमात्मा का भी रूप बिंदी है, भले बिंदी है लेकिन वो तो परमात्मा है ना, आत्मा सो परमात्मा है तो परमात्मा भी तो बिंदी ठहरा, चलो आप मानते हो आत्मा सो परमात्मा तो आत्मा बिंदी है ये मानते, तो परमात्मा भी तो बिंदी ठहरा ना, इसमें फर्क तो हो नहीं सके, रूप तो दोनों का समान है। सब परमात्मा हो जाए तो सब क्रिएटर हो जाए, सब रचयिता बन जाए, फिर रचना कौन सी? सब आत्मा सो परमात्मा, आत्मा तो रचना है, और वो परमात्मा हो जाए तो आत्मा भी रचयिता हो जाए, फिर रचना क्या, रचना कौन सी हुई? सब परमात्मा हो जाए तो सब क्रिएटर हो जाए, सर्व की सदगति करने वाला तो एक बाप है ना, बाकी तो हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, ये बुद्धि में बिठाना पड़े, ये समझ की बात है, तो बुद्धि में ये बिठाना पड़े। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो कट निकल जाएगी। कई बच्चे ना बाबा की मुरली सुनते हैं, बाबा तो वही वही कहते हैं मुझे याद करो मुझे याद करो, तो बाबा कहते हैं मैं कर कहता रहूंगा, अंत तक कहता रहूंगा, क्योंकि यही काम आने वाली चीज है। और क्यों अंत तक कहता रहूंगा? क्योंकि करते नहीं है, कर लो तो बाबा क्यों बार बार कहे, पर नहीं करते इसलिए बाबा को बार बार कहना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं मुझे याद करो तो कट निकल जाएगी, यही मेहनत है। एक तो आधा कल्प दे अभिमान में रहे हो, सत्युग में देही अभिमानी रहते हो पर बाप को नहीं जानते हो, वहां तो देही अभिमानी है पर बाबा को तो वहां नहीं जानते हैं, ज्ञान को नहीं जानते हो वहां। इस समय जो तुमको नॉलेज मिलती है वो नॉलेज जो अभी बाबा दे रहे हैं ये नॉलेज गुम हो जाती है, वहां सिर्फ इतना जानते हैं कि हम आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेते हैं, पाठ बजाते हैं, इसमें फिक्र की बात क्या है? सत्युग में इसलिए कोई रोता नहीं है, कोई शरीर छोड़ता है तो कोई रोता नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि आत्मा ने एक शरीर छोड़ दूसरा लिया है, तो फिक्र की क्या बात है। हर एक को अपना अपना पार्ट बजाना है, रोने से क्या होगा? ये समझाया जाता है, अगर कुछ समझे तो शांति आ जाए। किसी को भी हम समझाते, मृत्यु भाषण करने जाते हैं ना, किसी के कोई शरीर छोड़ते तो ब्रह्मा कुमारियों को बुलाते हैं हम, तो उसमें यही बताते हैं कि आत्मा ने दूसरा पार्ट बजाने लिए ये शरीर छोड़ा है। तो रोने से क्या होगा, ये समझाया जाता है, अगर कुछ समझे तो शांति आ जाए। खुद समझेंगे तो औरों को भी समझाएंगे, बुजुर्ग लोग समझाते भी हैं, रोने से क्या वापस थोड़ी आएगी आत्मा, हाँ ऐसे समझाते हैं। शरीर छोड़ आत्मा निकल गई, उसमें रोने की क्या बात है। अज्ञान काल में भी ऐसे समझते हैं ना कि इसमें रोने की क्या बात है, आत्मा ने एक शरीर छोड़ा, एक वस्त्र छोड़ा, दूसरा शरीर रूपी वस्त्र लिया, इसमें रोने की क्या बात है। अज्ञान काल में भी ऐसे समझते हैं, परंतु हाँ ये समझते हैं कि आत्मा ने एक चोला छोड़ दूसरा लिया, परंतु ये थोड़ी जानते हैं कि आत्मा और परमात्मा क्या चीज है, वो नहीं जानते। आत्मा में खाद पड़ी है वो तो समझ, आत्मा में खाद पड़ी है ये नहीं समझते हैं। वो तो क्या समझते हैं कि आत्मा तो निर्लेप है। अब आत्मा में खाद पड़ी है बाबा समझाते, पर वो क्या समझते, आत्मा निर्लेप है। तो ये बहुत महीन बातें हैं, बाबा जानते हैं, बहुत बच्चे याद में नहीं रहते हैं, नहीं रहते हैं, एम्फसिस दिया, याद नहीं रहते। सिर्फ समझाने से क्या होगा, बहुत प्रभावित हुआ, परंतु इससे उसको इसका कोई कल्याण थोड़ी हुआ। ज्ञान की लबाड़ बहुत बता दी, बहुत कुछ सुना दिया, बहुत खुश हुआ, लेकिन बाबा कहते इसमें उसका कल्याण थोड़ी हुआ। आत्मा परमात्मा की पहचान मिले तब समझे बरोबर हम उनके बच्चे हैं, ये वो समझे कि हम आत्मा है और उस परमात्मा के बच्चे हैं। बाप ही पति पावन है, हमको आकर दुख से छुड़ाते हैं, वो भी बिंदी है, तो बाप को निरंतर याद करना पड़े। बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी जानना कोई बड़ी बात नहीं है, बल समझने के लिए आते हैं, परंतु इस अवस्था में तत्पर रहे कि मैं आत्मा हूं, इसमें ही मेहनत है। आत्मा परमात्मा की बात तो तुमको भी बाप ही आकर के समझाते हैं, तुम भी पहले कहां जानते थे, अभी बाबा ने बताया आत्मा क्या है परमात्मा क्या है। आत्मा परमात्मा की बात तो तुमको भी बाप ही आकर समझाते हैं। सृष्टि का चक्र तो सहज है, जितना हो सके उठते बैठते देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। देही अभिमानी कैसे होंगे, जो सचमुच ये मेहनत करते हैं देही अभिमानी बनने की और देही अभिमानी रहते हैं उठते बैठते, तो उनकी स्थिति कैसी होगी। बाबा कहते हैं देही अभिमानी बहुत शांत रहते हैं, शांत रहते हैं, समझते हैं मुझे साइलेंस में जाना है, निराकारी दुनिया में जाकर विराजमान होना है। उनको परम धाम याद आता रहेगा ना, मुझे जाना है उस शांति धाम में, फिर शांति धाम में जाके विराजमान होना है। हमारा पाठ अभी पूरा हुआ, बाप का रूप छोटा बिंदी समझेंगे। अब ये कोई बड़ा, वो कोई बड़ा लिंग नहीं है, बाप का भी रूप छोटा बिंदी समझेंगे, वो कोई बड़ा लिंग नहीं है, बाबा बहुत छोटा है, साइज में बहुत छोटा है, वही नॉलेजफुल सर्व का सदगति दाता है। रूप में बिंदु और गुणों में सिंधु, ऐसे कहते ना, तो वही नॉलेजफुल सर्व का सदगति दाता है। मैं आत्मा भी नॉलेजफुल बन रहा हूँ, ऐसा चिंतन जब चले तब ऊंच पद पा सके। दुनिया भर में कोई आत्मा और परमात्मा को नहीं जानते, कोई भी आत्मा और परमात्मा को दुनिया भर में नहीं जानते। देखो कई बार बाबा कहते हैं ना, चैलेंज करते हैं, जाओ दुनिया देख कर आओ, कौन कहाँ कहाँ पर कोई ऐसा ज्ञान देता है जैसे भगवान तुम बच्चों को यहाँ देते, कोई नहीं ऐसा ज्ञान देता है। तो बाबा कहते हैं, तुम ब्राह्मणों ने अब जाना है, सन्यासी भी नहीं जानते, कहाँ भी चले जाओ किसी सन्यासी के पास भी, वो भी नहीं जानते, ना आकर समझेंगे, अभी वो आकर समझे वो भी नहीं करेंगे, वो तो सब अपने अपने धर्मों में आने वाले हैं, हिसाब किताब चुप होकर चले जाएंगे, तुमको भी यह मेहनत करने से बाप से वर्षा मिलेगा, अब फिर देही अभिमानी बनना है, दिल तो आत्मा में है ना, दिल आत्मा में है, बाकी हृदय शरीर में है, तो मेरी दिल मेरा दिल मेरा दिल 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 करते रहते हैं, तो बाबा कहते हैं मन को भी दिल कहेंगे, और दिमाग माना बुद्धि, तो मन हो गया दिल और बुद्धि हो गई दिमाग, लेकिन वो शरीर का पर है, आत्मा की चीज तो मन और बुद्धि है। तो बाबा कहते हैं दिल तो आत्मा में है ना, आत्मा को ही दिल बाप से लगानी है ना, मन बुद्धि बाबा से लगानी है, तो आत्मा को ही दिल बाप से लगानी है। क्यों बाबा दिल कहते हैं, क्योंकि दिल जो है वो प्रेम की निशानी है ना, प्रेम तो कहाँ, जिससे प्रेम होता है उसको कहाँ स्थान देते, दिल में स्थान देते, तो इसीलिए बाबा को भी दिल से याद करो, आत्मा को ही दिल बाप से लगानी है, दिल शरीर में नहीं है, शरीर के तो सब स्थूल ऑर्गन्स है, दिल को लगाना ये आत्मा का काम है, शरीर नहीं लगाएगा दिल, वो तो ये हृदय है तो धड़कता रहता है 24 घंटा, एक सेकंड भी रुक जाए तो खत्म, तो दिल को लगाना ये आत्मा का काम है, तो अपने को आत्मा समझ फिर परमात्मा बाप से दिल लगानी है। आत्मा बहुत सूक्ष्म है, कितनी छोटी सूक्ष्म आत्मा है, लेकिन पार्ट कितना बजाती है, जबरदस्त पार्ट है 84 जन्मों का वो छोटी सी आत्मा में, और वो भी कभी मिटता नहीं, इसी को क्या कहेंगे, इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट जो कभी मिटता नहीं कभी घिसता नहीं, इसको बाबा क्या नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, कुदरत, कुदरत, अभी कैसे है क्या है वो समझाना मुश्किल, इसीलिए कुदरत कह देते हैं, ये है कुदरत। अब कुदरत का जो इंग्लिश जो ट्रांसलेशन तो कैसे करते, दिस इज अ वंडर, बस खाली वंडर कह देते हैं, इतनी छोटी चीज में कितना अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, ये कभी मिटने वाला नहीं है, ये कभी मिटने वाला नहीं है, बहुत सूक्ष्म है, तुम कोशिश करेंगे तो भी बड़ी चीज याद आएगी, तुम कोशिश करो एकदम बिंदी बिंदी में बिल्कुल सूक्ष्म बिंदी अपने आप को समझो, फिर भी बड़ी चीज याद आ जाएगी, तो तुम कोशिश करेंगे तो भी बड़ी चीज याद आ जाएगी, मैं आत्मा छोटा स्टार हूँ तो बाप भी छोटा है, तुम बच्चों को पहले पहले मेहनत यही करनी है, इतनी छोटी सी आत्मा ही इस समय पतित बनी है, आत्मा को पावन बनाने का पहले पहले ये उपाय है याद, जिससे ये आत्मा पावन बनेगी, पढ़ाई पढ़नी है, बाकी खेलना कूदना ये तो अलग बात है, खेलने का भी एक हुनर है, देखो क्रिकेट खेलते हैं कितने उसमें अवार्ड्स लेते हैं, हुनर तो है ना, सब तो नहीं खेल सकते हैं, खेलने का भी एक हुनर है, पढ़ाई से मर्तबा मिलता है, खेल कूद से मर्तबा नहीं मिलता है, स्कूलों में भी खेल कूद होता है लेकिन उससे मार्क्स तो नहीं मिलते ना, मार्क्स तो पढ़ाई के सब्जेक्ट से मिलती है, तो खेल कूद से मर्तबा नहीं मिलता है, खेल आदि की डिपार्टमेंट ही अलग है, उनसे ज्ञान व योग का कनेक्शन नहीं है, ये भोग आदि लगाना भी बाबा कहते खेल है, खेल है। मुख्य बात है ही याद की। तो सारी मुरली का सार एक ही शब्द है, याद। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, धर्म राज की सजाओं से बचने के लिए याद की गुप्त मेहनत करनी है। पावन बनने का उपाय है अपने को आत्मा बिंदी समझ बिंदु बाप को याद करना, यही पावन बनने का उपाय है। दूसरा, ज्ञान में अपने आप को मियां मिठू नहीं समझना है, एक रस अवस्था बनाने का अभ्यास करना है, बाप का जो फरमान है उसे पालन करना है। वरदान, हर कर्म करते हुए कमल आसन पर विराजमान रहने वाले सहज व निरंतर योगी भवा। कमल आसन, तो कमल आसन पर कैसे रहेंगे? हर कर्म करते हुए कमल आसन पर विराजमान रहने वाले सहज व निरंतर योगी भव। तो निरंतर योग युक्त रहने के लिए कमल पुष्प के आसन पर सदा विराजमान रहो। लेकिन कमल आसन पर वही स्थित रह सकते हैं? कमल आसन पर कौन स्थित रह सकते? कमल तो बहुत हल्का होता है, अब उस पर कौन रह सकता है? कमल आसन पर वही स्थित रह सकते हैं जो लाइट है, जो बहुत हल्के हैं। किसी भी प्रकार का बोझ अर्थात बंधन न हो। मन के संकल्पों का बोझ, कितने प्रकार के बोझ हैं? मन के संकल्पों का बोझ, संस्कारों का बोझ, दुनिया के विनाशी चीजों के आकर्षण का बोझ, लौकिक संबंधियों की ममता का बोझ, जब ये सब बोझ खत्म हो तब कमल आसन पर विराजमान निरंतर योगी बन सकेंगे। ये सब बोझ खत्म हो, डबल लाइट बन जाए, तब कमल आसन पर विराजमान निरंतर हो सकेंगे। तब कमल आसन पर विराजमान निरंतर योगी बन सकेंगे। स्लोगन, सहनशीलता का गुण धारण कर लो। सहनशीलता का गुण धारण कर लो तो असत्यता का सहारा लेना नहीं पड़ेगा। झूठ कब बोलते हैं? जब अगर सच बताया तो मार पड़ेगी, सच बताया तो सजा मिलेगी, तो झूठ बोल देते हैं। अब झूठ बोला क्योंकि डर है सजा मिलेगी मार मिलेगी, तो सहनशीलता नहीं है ना। सच बता दो तो अगर मार भी पड़ी सहनशील है तो दर्जा क्या है, तो सत्य बताएंगे। तो सहनशीलता का गुण धारण कर लो तो असत्यता का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। कितनी बड़ी बात है ये। अव्यक्त इशारे, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो के अंतर्गत किसके संस्कार सरल मधुर होते हैं तो वो संस्कार स्वरूप में आते हैं। सरल स्वभाव होगा वो स्वरूप में आते हैं। जब संस्कार बाप दादा के समान बन जाएंगे तो बाप दादा के स्वरूप सभी को देखने में आएंगे। जैसे बाप दादा वैसे हूँ बहू वही गुण वही कर्तव्य वही बोल वही संकल्प अनुभव होंगे। सभी के मुख से निकलेगा, क्या निकलेगा? ये तो वही लगते हैं, हाँ, जैसे बाबा समान वही लगते हैं। अच्छा, ओम शांति ओम शांति ओम शांति। आज से तो बट्टी शुरू हो रही है, खास करके जयपुर किशनपुर बाजार वहाँ से भाई बहने आए हैं, कुछ तो सुबह सुबह पहुँच गए, बहुत सारी टीचर्स आई है, हमारी सुषमा बहन और चंद्रकला बहन तो कल ही पहुँच गए थे और आज शाम से उनकी भट्टी है, 35 टीचर्स आई है सुषमा बहन के कनेक्शन की, 35 टीचर्स बैठी है, कोई जो बैठी है सुषमा बहन की तरफ से कोई अभी, क्योंकि अभी अभी एक दो है तो अभी अभी पहुंची है, और शाम को 5 बजे से भट्टी आरंभ होगी मेडिटेशन हॉल में, 5 बजे मेडिटेशन हॉल में आएंगे और सभी के नाश्ता भोजन का जो स्थान है वो ऊपर का डाइनिंग हॉल है, बड़ा डाइनिंग हॉल, वहीं सबका नाश्ता दिन का भोजन है, कृपया नीचे नहीं ऊपर ही जाएंगे, कोई नहीं जा सकते तो लिफ्ट है, लिफ्ट से ऊपर जाएंगे। अभी हम सब बाबा की याद में बैठेंगे। मुझे बताया गया कि कहाँ से, ओडिशा कहाँ से कोई आए हैं टीचर्स बहने, कोई गीत गाएंगे, कौन गीत गाएगा, किसको गाना है, कौन आने वाले है क्या? ज्ञानेश्वर भाई आपने क्या बताया, आपको गाना है, अकेले गाओ, अकेले आप ही हो, अच्छा तो आपने पहले नहीं दिया इनको, टाइम लगता है फिर तो, वो तो पहले बताना होता है, तो रहने दो फिर, रहने, ओम शांति।